अं नमो भगवते वासुदेवाय, अं नमो भगवते वासुदेवाय, अं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयति गिरिं यत्कृपातम वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईशरम्। श्रीमद्भागवतम् स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक नंबर 34 शीर्षक भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। एवं गोमुख एवं गोमुग काक चर्चायाम ब्रजं तिष्ठर्नासिन शयानम् काकमृग गोचरितः पिबति ख्यादत वहति स्म। एवं मृग काकचर्यायाम ब्रजं तिष्ठर्नासिन शयानः काकमृग चरितः पिबति स्वादस्त महति स्म। एवं गुमृग काकचर्यायाम ब्रजं तिष्ठर्नासिन शयानः काकमृग चरितः पिबति स्वादत्त वमिहति स्म।
शब्दार्थ एवं इस प्रकार गो गायों मृग हिरण काक कौवे की चर्जया चर्चा क्रिया द्वारा ब्रजन घूमते हुए तिष्ठन खड़े खड़े आसीनम बैठे हुए शयानम लेटे हुए काक मृग गो चरितः कौवे हिरण तथा गाय को भांति आचरण करते हुए पीबती पीता है खादती खाता है अवमेहती पिसब करता है स्म उसने इसे किया। अनुवाद इस प्रकार ऋषभ देव ने गायों हिरणों तथा कौवे की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी भी इस इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते कभी लेट जाते। इस प्रकार वे गाय हिरण तथा कौवे के समान की आचरण करते। उनके समान वे खाते पीते तथा मल मूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे। कृपया दोहराइए। इस प्रकार ऋषभ देव गाय हिरण तथा कौवे का वृत्ति का अनुगमन किया। कभी इधर इधर चलते थे तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते थे कभी भी लेट जाते। इस प्रकार के गाय हिरण तथा
कौव के समान आचरण करते हैं, उनके समान वे खाते पीते तथा मल मूत्र का त्याग करते हैं। इस प्रकार वे लोगों के धोखा में रखे रहे। तात्पर्य शील प्रभुपाद की, भगवान होने के कारण ऋषभ देव को दिव्य देह प्राप्त थी। चूंकि सामान्य लोग उनकी वृत्ति तथा योग साधना को नहीं समझा पाए, इसलिए वे उनके तंग करने लगे। अतः उन्हें धोखा देने के लिए उनके गाय हिरण तथा कौवे के साथ आचरण प्रारंभ किया। एवं गुमरुगा काक चर्जया ब्रजम तिष्ठय नाशिनम शयान काक मृग गोचारितम पिबति साधत मिहति स्म। तम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले संरूप कदा मध्यं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीजूत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सघन ललिता श्री विशाखानितां च। नमों विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देश तारिणे वंचा कल्पतरुवच्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनैव वैष्णवैव नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौडदये पुष्पवंतौ चित्र सुंदतमनदो। नमो त्रिकलसत्ताय जगन्नाथ सुताय च सवृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातकालीन भगवत कक्ष में बाबा राम हरे में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन। अब ये प्रसंग बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। अरे भगवान अपना स्वपुत्र का माध्यम से हम जैसे बद्ध जीव का उपदेश देते हैं कि ये भौतिक जगत में रहने से कैसे कैसे हमको आचरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान होने के कारण ऋषभ देव की दिव्य देह धारण प्राप्त थी। इसी से भगवान का शरीर दिव्य होता ही है, क्योंकि भगवान का नाम रूप लीला एवं परिकर ये सभी दिव्य होता है, उनका धाम जैसे दिव्य है। क्योंकि हमारे जैसे देही और देह में भेद नहीं है, कोई शास्त्र से ये प्रमाण भी आप लोग सुने भी होंगे, क्योंकि भगवान का ये दिव्य देह में कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ता है। कभी कोई अस्त्र शस्त्र जैसे आप भगवत गीता में दूसरा अध्याय में सुने हैं कि हमारे जो देही को कोई भी मारात्मक हथियार से वह किसी और प्रकार से उसको नष्ट किया नहीं जा सकता है, तो भगवान का यह अंश विशेष को नहीं किया जा सकता है, तो भगवान को ये सब करना नहीं पड़ता है। लेकिन ये बद्धजीव का अंदर उन्होंने ऐसे विचरण करते हैं, तो एक आप काल आप जैसे सुने थे कि 26 अवतार काल बारे में ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान का जो अवतार समुद्र में लहरें जैसे असंख्य होते हैं, ऐसे ही भगवान का अवतार बा अवतारी भी भगवान का इसे असंख्य होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं समुद्र का लहरों को। इसे भगवान का अवतार का भी हम हमारे जो भौतिक बुद्धि से भी गिन नहीं सकते। आजकल जमाना में जैसे कंप्यूटर और हार्ड डिस्क वगैरह भी है, उस भी फैल हो जाएगा। तो मुख्यतः भागवत में भगवान का और अवतार का बारे में इसे वर्णन आता है कि मुख्यतः छह प्रकार का अवतार मुख्य माना जाते हैं। पहले बार आप देखिए, पहले अवतार जो भगवान का, इसे तो आप सुने कि भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं वह पहले विस्तार, और उसे पर दूत चतुर्भुव आता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, एवं द्वितीय चतुर्भुव भी आता है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। उसमें द्वितीय संकर्षण से जो भगवान का विलास विग्रह जो नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं उनका ही स्वरूप है। लेकिन प्रथम जो पुरुष अवतार आते हैं कारण दशाई गर्भदशाई और क्षीरदकशाई, और गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और लीला अवतार वामन नरसिंह राम अवतार आदि, और युगावतार हिसाब में भी कई अवतार आते हैं। इसे कि कहा भागवत में एकादश स्कंद में वर्णन है कृष्ण भगवान भी अवतार रूप में आते हैं। इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान को कृष्ण को अवतारी कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर बता रहे कि नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। एकादश स्कंद में उद्धव एवं भगवान कृष्ण का संवाद में बताते हैं, द्वापर भगवान कृष्ण पीतवास निजयोधा, उसमें भी भगवान आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का जो कलर होता है और रंग होता है तूते कलर का आता है, जैसे हरे कलर का। लेकिन जब ब्रह्मा का एक दिन में जो भगवान आते हैं ये भूम वृंदावन में लीला करने के लिए, तो भगवान ये श्याम सुंदर व माखन स्वरूप में आते हैं। और मनंतर अवतार आता है, उसमें हर मनु का राजत्वकाल में रहता है, और सत्यावेश अवतार भी आता है। ये सत्यावेश अवतार में ये ऋषभ देव भी आते हैं, नारद मुनि पृथ्वी महाराज। तो सत्यावेश अवतार का होने के नाते उन्होंने इसे व्यासदेव भी सत्यावेश रूप में आए, और भागवत को उन्होंने विस्तार रूप में उसको वर्णन किए। एवं कपड़ी देव भी सत्यावेश रूप में आए, लेकिन उन्होंने भी उसको भागवतम को बहुत सरल ढंग से हृदयंगम होने का भाव से उन्होंने अपना माता को उपदेश देते हुए ये जन समाज को उन्होंने और उपदेश दिए। लेकिन भागवतम में और भी वर्णन है, जैसे भगवान जगन्नाथ जी का अवतार में आप सुने हैं कि नहीं, कोई भागवतम में कोई शास्त्र में इसे नहीं है कि नहीं, लेकिन है। हमारा गौर गोविंद महाराज अपना कई शास्त्रों से उन्होंने खास करके कन्हई खुंटिया का जो टीकाओं से उन्होंने उद्धृत किए हैं कि वो भी आर अवतार नहीं है, अवतारी है, क्योंकि उनका जो ये जो हो चका जैसे आंख से देखते हैं आप, ये राधा का भाव में उन्होंने भावित होकर इनका ये रूप है। लेकिन कई शास्त्र में उनको अवतार में मानते हैं, कोई भी शास्त्र में हम पढ़े हैं कि उनको काल भैरव भी मानते हैं। जो भी हो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी शास्त्र में कई वर्णन है अवतार के बारे में, लेकिन उन्हें प्रच्छन्न रूप में आते हैं और भगवान कोई भी रूप लेके आ सकते हैं। काल जैसे आप सुने हैं 24 अवतार का बारे में, जयदेव गोस्वामी ने बतलाए 10 अवतार का अपना जो गीत गोविंद में, लेकिन हमारे भागवतम वर्णन करते हैं कि फाइनल है उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एते चांस कड़ापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकरणम लोक मृयंती झुके झुके। तो ये भगवान का जो इतना असंख्य जो अवतार है क्या प्रयोजन है? हाँ जरूर प्रयोजन है, क्योंकि भगवान बिना प्रयोजन में अपना ये लीला का पुष्टि करते नहीं। क्योंकि अभी जैसे आप सुन रहा है कि ऋषभ देव ने ये वर्णाश्रम व्यवस्था का और अपना पुत्र को माध्यम से उन्होंने ये भी चर्चा की है कि ये समाज में कैसे रहन सहन, खास करके उन्होंने बताया कि जीव को हिंसा नहीं करना, क्योंकि ये जगत में लगभग 75% भाग इंसान दूसरा का हिंसा में लगे हुए हैं। ये हिंसा का मतलब क्या है ना, दूसरा का जो स्वाधीनता है, मान लीजिए मनुष्य को जीना है 100-120 साल का, लेकिन उनको कोई मर्डर कह दिया है कि वह जैसे मुर्गी और हिरण वगैरह है, बकरी वगैरह को हनन किया जाता है, उनका जो स्वाधीनता को नष्ट कर देना और हमारे जो जीवन का उद्देश्य को जो हम नहीं जानते हैं तो उसको भी हिंसा कहा जाता है सूक्ष्म रूप से। तो उन्होंने उपदेश दिए और इतना तक कि आप उनका जो दिव्य शरीर के बारे में चर्चा हुई है, काल भी हुआ और भी पहले भी और आगे जाके होगा, क्योंकि उनका जो दिव्य शरीर से जितना भी वस्तु निष्कासन होता था सब दिव्य होता है, क्योंकि कल आप सुने कि 10 मील तक उनका जो मल त्यागने का बाद ये सुगंध फैल जाता था। ये इंसान कितना भी बढ़िया बढ़िया वस्तु ग्रहण करे लेकिन ही दूसरा हो के अपना ही आर हम मोड़ को आर आग्रह करने में हिचकचाता है, क्योंकि आप हमारे जैसे महाजन का कहना है कि वैराग्य ऐसे होना चाहिए कैसे ना, मोड़ बहुत त्याग करना चाहिए, मोड़ इतना खतरनाक चीज होता है और इतना दुर्गंध होता है। लेकिन भगवान अपना इंसान का शरीर में और जो 84 लाख जो जुनिया है उनका शरीर में ऐसे और व्यवस्था इसे पैकिंग करके रखे हैं कि वो बाहर नहीं आता है, लेकिन इसका आसक्ता हम भरे पड़े रहते हैं। इसीलिए पहले उन्होंने बोले कि ये शरीर की आरत तपस्या करने के लिए ऐसे सुकर कुकर का जैसे नष्ट नहीं करने दिया। देखिए 80 माइल तक उनका सुगंध फैलता था, लेकिन ये इंसान कोई बाहर इसको त्याग कर देता है तो उसको सफाई करना पड़ता है, और सफाई करने के लिए खास करके कई आर व्यवस्था तो होती है, और ब्रज में सफाई करने के लिए खास करके भगवान का जो अवतार हुआ था स्वयं रूप में देखिए कि देखिए भगवान हर लीला में उनका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य का साधन करते हैं, क्योंकि जैसे शुक्र रूप जो उन्होंने जब धारण किए उनका ये महत्व उद्देश्य नहीं था कि ये टॉयलेट सफा करना है। कभी कभी इंसान गुस्सा होकर भी मुसलमान लोग को जैसे हराम बनने से उन्हें नाराज हो जाते हैं, कोई कोई बुरा भाषा में इंसान बता देते कि अरे तुम्हें स्वर का बच्चा है, वास्तविक तत्व तो देखा जाए स्वर का ही बच्चा है, क्योंकि कि दूसरा जो अवतार है जयदेव उस सामने बतलाए कि आर केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरि, जी पिता स्वर है तो वो बच्चा क्या होंगे, स्वर का बच्चा हुए कि नहीं, तो उसमें बुरा क्या है। तो भगवान का ये अवतार हर उद्देश्य के लिए, क्योंकि ये हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी देवी को उन्होंने एक आर समुद्र का अंदर फेंक दिए थे, क्योंकि कीचड़ में भरा हुआ था, एक कीचड़ से पृथ्वी माता को पा धरित्री देवी को उठाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने इस शुक्र रूप को धारण किया। लेकिन उन्होंने जब बाहर आए तो कुछ क्षण मध्य में उन्होंने जब ब्रह्मा जी का नाक से उन्होंने निकल लेते, जो छींक दिए उससे निकल लेते, लेकिन इनका दिव्य शरीर धीरे धीरे पहाड़ का जैसे बन हो गया था। लेकिन यही नहीं कि भगवान ये सूर्य शुक्र रूप धारण स्वर रूप धारण कर लिए तो भगवान स्वर बन गए, उनका कुछ साधन बा भगवान ये पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए आए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऋषभ देव ने एक परमहंस स्थिति में है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और भी कुटीचक बौद्धक और उदम्बर ऐसे कोई आर भाग में उसका सन्यासी का भी कैटेगरी है, उसमें एक स्थिति होता परमहंस। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि पानी का साथ दूध को मिलावट कर दिया जाए तो ये जो राजहंस होते हैं जो दूध को निकाल लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, तो ये परमहंस स्थिति में जब भक्त उच्च स्थिति में आते हैं तो क्या ये भौतिक जगत का कोई भी और पदार्थ उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता और आसक्ति भी नहीं होते उन्होंने। जिसे आप देखते हैं कि यहाँ ऋषभ देव ने पागल की तरह बहिरा के इधर से पिशाच की तरह घूमने लगे, और आप सुने हैं कि उनका ये दिव्य शरीर में ये भौतिक जगत का खास करके जिद विवाहित स्त्रियों आकर्षित हो जा रहे थे। काल में उसमें पढ़ रहा था कि बड़देव विश्वाभूषण का टीका में और वैष्णव तुष्णी में जीव गोस्वामी का, उसमें टीकाकार बताते हैं कि उनका जो ये दिव्य शरीर से माताएं नहीं आ सकते होते थे और भी जीव जानवर भी आसक्त हो जाते थे, लेकिन साधक को कैसे रहना चाहिए वो उन्होंने दिखलाने के लिए ये दिव्य शरीर को उन्होंने फिर छुपाने के लिए बेस व्यवस्था की, क्योंकि माताओं आसक्त होने से उनका आज सत्य तो भी नष्ट हो रहा है और अपने साधक जीवन में उनका परस्पर आसक्त होने का भय रहता है, इसलिए उन्होंने ये परम स्थिति के लिए और शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये अवधूष वेश का बा ये जो पागलपन का बा पिशाच का रूप उन्होंने धारण कर लिया, और जगह में खनिज में गांव में उपवन में घूमने लगे। इसमें बताया जा रहा है कि उनकी वृत्ति तथा जुगत साधना को कोई समझा नहीं पाए, इसलिए उनने क्या हुआ ना उनको तंग करने लगे। ये इंसान पहले तो सभी लोग उनको उनका और शरीर बा उनका आचरण से आसक्त होते थे, लेकिन आप आगे आप सुन रहे कि उनको पे तंग करने लगे, आप सुने हैं कि उनको और कचरा फेंकने लगे, ये मल त्याग करके उन्होंने वहां ही खाया करते वहां सोया करते थे और कोई बात विचार नहीं था, इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने गाय का उदाहरण दिए। देखिए गाय कुछ भी मिल जाता है जैसे प्लास्टिक कोई भी और गंदा चीज उन्होंने ग्रहण कर लेते, लेकिन उनका अंदर एक एक क्षमता है कि वो पचा लेते, और कौवा का जैसे उन्होंने भी व्यवहार किया। देखिए कौवा कई अच्छा जगह में नहीं रहते, जैसे मक्खी कहीं पर भी आकर पूरा हुआ कि पोसी हुआ वहां पर ही बढ़ता है। जैसे हंस उन्होंने कहीं पवित्र हृदय में मां सरोवर में ये पद्मनाल का आस्वादन करते रस का, ये परमहंस भी ऐसे करते हैं। लेकिन कौवा देखिए सुबह से शाम तक अपना खान पान ढूंढने के लिए हर गंदी जगह में ही रहता है, खास करके मुसलमान जगह का जो एरिया होता है उसी जगह में ही ज्यादा खास करके दिया जाता है। और कौवा कोई प्रकार का बोली भी बोलता है, और कौवा का कोई बोली इसे शुभ में माना जाता है। उसमें एक शास्त्र का नाम है कोक शास्त्र, काक चरित्र में है। एक बार श्रीपाद राधारमण महाराज ने मेरे को बताए थे कि आपका पास काक चरित्र है तो मेरे को दीजिए। तो मैं सनातन प्रभु को हमारे बताए थे कि आपका पास है क्या, बोले नहीं उसमें तो इसे कोई सन्यासी के लिए नहीं होता है। तो मैं फिर वो ग्रंथ महाराज को खरीद के नहीं दिया। जो भी हो तो उनका जो आचरण अभी ऋषभ देव को अब उनका जो आचरण देख रहा है कि उनका आचरण अभी परमहंस स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने ये देहात्म बुद्धि से ऊर्ध में है। क्योंकि देहात्म बुद्धि में तब तक हम रहते हैं, तब तक जब तक हमारे शरीर का बुद्धि बा आसक्ति रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बतलाइए कि आप एक गुण का अंदर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो तीन गुण है तीन प्रकार का जंजीर जैसे है। सोने का धातु से जंजीर भी बना हो, चांदी का बना हो, लोहे का बना हो, लेकिन जंजीर तो है ही, उसमें जो जिस कैदी की बांध दिया जाता है ये बंधन का कारण बताता है। इसीलिए भगवान बतलाए त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुनम, क्योंकि इस सप्तगुण में ज्ञान का माध्यम से हम बा हमारे ज्ञान का परिशुद्धित बा ज्ञान का उद्बोधन होता है, एवं रजगुण माध्यम से हमारे जो कठिन परिश्रम बा दूसरा का प्रभुत्व विस्तार कर सकते हैं, एवं तमगुण माध्यम से हम भगवान का सेवा कैसे कर सकते हैं। ना देखिए यहाँ पर जो बता रहे शयन, उनका शयन और रहन एक कैसे हो रहा है, क्यों नहीं कि शास्त्र में ऐसे नीति शिक्षा में ऐसे बता देता है कि शयनम पद्मनाभंच, हम जो स्वयं होता है सोना होता है ये तमगुण का बताया जाता है। प्रभुपाद उल्लेख किए हैं भगवत गीता में जो 6 घंटा से ज्यादा सोता है तो तमगुण का माना जाता है। तो हम शयन को कैसे भगवान का सेवा में लगा सकते हैं, यहाँ पर नीति शिक्षा में बताया जाता है कि शयनम पद्मनाभंच। इसीलिए इस शयन का समय बस सोने सोते समय भगवान पद्मनाभ को स्मरण करना चाहिए। जो कोई वस्तु जब खो जाता है हमारे पास से तो कल्याण भगवान का नाम लेना चाहिए। इसे हर भगवान का नाम का महत्व है, इसलिए उसको हम भगवान का सेवा में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऋषभ देव का बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ऋषभ देव ने अपना आचरण से ये परमहंस स्थिति में एवं देहात्म बुद्धि से ऊर्ध में जाने से हमारे आचरण कैसे होना चाहिए उन्होंने दिखा रहा है। लेकिन हम यदि ऋषभ देव का जैसे आचरण करें समाज में तो हमको ये गांव में भी रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ये स्थिति नहीं है। क्योंकि ऋषभ देव का शरीर दिव्य था, उनका आचरण दिव्य था, क्योंकि उन्हें मलमूत्र त्याग करते थे वो सुगंध फैल जाता था। लेकिन हम मलमूत्र त्याग कर देते हैं तो क्या दुर्गंध फैलता है। लेकिन भगवान कृष्ण का लीला में ऐसे भी लीला आता है कि श्रीमती राधा रानी के सखी लोग कई बार भगवान से मिलन कराने के लिए कई कुंज में उन्होंने व्यवस्था करके रखते हैं। भगवान है तो धोखे का सरदार है, इसलिए अपना प्रेयसी लोग
तो कोई बार धोखा भी दे देते हैं और ठीक टाइम में भी नहीं आते हैं। एक सखी को बात दे के दूसरा सखी का कुंज में चले जाते हैं। तो एक समय की बात है कि श्याम सुंदर ने बात दिए थे जो कुंज को उसी कुंज में आ गए, लेकिन सखियां भगवान से भी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। कैसे ना, श्रीमती राधाणी है कुंज में, लेकिन श्याम सुंदर विरह अवस्था में ये मदन आगे आवेग में सीता राधाणी को ढूंढने के आ जाते हैं एवं द्वारपाल रूम में सखियां वहां विराजमान रहते हैं। सखी का बिना अनुमति से अंदर नहीं जा सकते, खास करके ललिता सखी का, क्योंकि ललिता सखी इतना प्रखर भाम प्रखरा है कि उन्होंने डांटते फकारते हैं। तो उन्होंने जब अनुमति मांगते हैं बोलते नहीं, श्रीमती राधाणी अभी आई नहीं, क्योंकि जटिला कुटरणु के उनको जाबट में रोक लिए। लेकिन श्याम सुंदर बताते हैं कि तुम लोग मेरा को धोखा दे रहा है, क्यों अभी मैं उनका जो शरीर से जो सुगंध आ रहा है ये सुगंध से मेरे को पता चल रहा है। तो सखीलों को खिला करके हंस के फिर वे श्याम सुंदर को श्रीमती राधा रानी का साथ मिलन कराते। तो ये दिव्य सुगंध का माध्यम से भगवान ये श्याम सुंदर राधारणी का रूप को आकृष्ट हो जाते एवं ये दिव्य सुगंध माध्यम से श्रीमती राधारणी को पता कर लेते। क्योंकि शास्त्र में ये वर्णन आता है कि जैसे चार प्रकार का पुरुष एवं चार प्रकार का स्त्रियां होते हैं, उसमें कहा जाता कि पद्म गंधा जो स्त्री होते पद्मिनी स्त्री खास करके होते हैं। जैसे वर्णन शास्त्र में आता है कि जो स्वर्गवासियां जो पद्मिनी स्त्रियां है उन्होंने भी दूसरा को भाई गंधर्व लोग को आकृष्ट करते ही है देवता लोग को, लेकिन उन्होंने भी भगवान का जो दिव्य लीला विलास में बिहार में उन्होंने भी आकृष्ट हो जाता है। जिस समय ये ब्रज वृंदावन धाम में भगवान महाराज रचाए तो उसी समय जैसे शास्त्र में कोई प्रकार का तो वर्णन है, क्योंकि ये भौतिक जगत में इंसान अपना ये भौतिक शरीर व भौतिक प्रकृति का साथ मिलाप का कारण भगवान का लीला भी ऐसे ही मानते हैं। ये भौतिक जगत स्त्री या पुरुष का जो संगम है ऐसे ही उन्होंने अपना मन में चिंता करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं। क्योंकि ऐसे ही यदि होता ये दिव्य लीला को सुनने के लिए देखने के लिए संगीत सुनने के लिए ये अप्सराएं और दिव्य विमान से दिव्य जगत का और रस को आस्वादन करने के लिए आकाश मार्ग में स्थित रहते। क्योंकि ये भौतिक जगत में ऐसे आजकल जमाने में जैसे आप कई पार्क से युवत युवती का मिलन से कई भौतिक जो साधु महात्मा लोग जो आर्य संस्कृति पालन करते हैं वो नहीं जाते, लेकिन इसमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। कभी कभी साधु संत वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे आप ये ब्रज का जो महावन का लीला से आप सुनते हैं कि जैसे आजीवन ब्रह्मचारी नारद मुनि ने ये नल कुबेर जैसे मंदाकिनी में अवगान कर रहे थे बच्चा के साथ जो स्वर्ग का वेश्या है, वेश्या उनको कहा जाता है कि जो एक पुरुष से दूसरा पुरुष से मिलते हैं। क्योंकि शास्त्र का वर्णन अनुसार कहा जाता है कि स्वप्न में भी पतिव्रता स्त्री को दूसरा पुरुष का चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कलियुग के लिए ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक कलियुग में मंद मत मंद सुमंद मत मंद भागा उपद्रुत एक मन में ये बुरा बात आने पर भी जब तक हम शारीरिक संबंध व कर्म में परिणाम नहीं करते तब तक पाप नहीं होता है। लेकिन ये मंदाकिनी में जब स्वर्ग का वेश्याओं के साथ नल कुबेर ने अवगाहन कर रहे थे, महात्मा नारद ने वहां आ पहुंचे, लेकिन देवांगनाएं
बस स्वर्ग का बैसा का इतना ज्ञान था कि साधु महात्मा लोग को और इज्जत देना है, सम्मान देना है। तो उन्होंने तुरंत क्या किए, ना अपना वस्त्र पहन लिए, लेकिन मदानंद थे कौन व कामानंद थे नर कुबेर, क्योंकि एक था धनी कर का और पुत्र थे और रूप जौवन में वो मत थे, और साधु लोग को परवाह किए नहीं, लेकिन साधु का अवमान करने के फल भी उनको प्राप्त हो गया, क्योंकि उनको ये विवस्त्र होके कोई हजार साल उनका रहना पड़ा। तो यहां पर उनका दिव्य शरीर को परवाह ना करके ये महात्मा ऋषभदम में हर जगह में विचरण कर रहा है, लेकिन ये दिव्य शरीर भगवान का कैसे होता है, इसमें हमारे महाजन वर्णन करते हैं कि भगवान का शरीर नव निरद निंदित कांति धर्म रस नागर सागर भूपवरम। भगवान का जो दिव्य शरीर होता है ये जो मेघ अभी अभी बरसने वाला होता है, अरे वो भगवान का रूप को भी ये मेघ का साथ तुलना करा जाता है। नव निरद निंदित कांति धर्म, नया नया मेघ जिसे अभी अभी उभरे आ रहे बारिश देने के लिए, उसी समय उसी जैसे कांति होता है भगवान का। और भगवान का जो शरीर में जो अपना पिंतांबर पहने हुए थे वो कैसे ना सौदामिनी में बिजली जैसे, तो कभी कभी निकुंज में भगवान श्याम सुंदर का साथ श्रीमती राधारानी का जो मिलन होता है, उन्हें विद्यापति चंडीदास ने ये वर्णन करते हैं कि जैसे मेघ में बिजली झटकता है ये चप्पल खूब अल्प समय आ जाता है, ऐसे ही श्रीमती राधारानी श्यामा सुंदर का शरीर में जड़ित हो जाते हैं। भ्रू विसंकित बंकिम सतधनु मुख चंद्र विनिंदित कुटी विधुम। भगवान का जो दिव्य शरीर में जो भ्रू रहता है जैसे इंद्र धनुष का जैसे रहता है, भ्रू विसंकित बंकिम सतधनु वो टेढ़ा होके इंद्र धनुष में सात रंग होता है, जैसे हम जो स्कूल में फोर क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे सार पढ़ाए थे कि बाघ नी सहलाना, बा मतलब बैगनी होता है बैगन का जैसे होता है, घ मतलब घन होता है, नी स मतलब